ओम शांति। एक प्रश्न है सभी से, जीवन में सुख शांति के लिए या पुरुषार्थ में तीव्रता के लिए कौन सी धारणाएं आवश्यक हैं? बोलना है आपको। बहने इधर को हो जाएंगी, थोड़ी आपसे पूछ लूं कुछ। आ जाओ जरा, पूछूं या ना पूछूं? चलो बोलो, बताओ भाई, बताएं पहले। सरलता, बहुत अच्छी चीज। पांच सात बातें निकालेंगे, फिर उन पे चर्चाएं करेंगे। हाँ, धारणाएं करेंगे, ये योग के सब्जेक्ट हैं। धारणाएं, सच्चाई और सफाई। अब बहने बताएं, फिर से बोलो। हाँ, वो सच्चाई सफाई में हो गई। पावर टू एडजस्ट, ठीक है। संपूर्ण पवित्रता, अब आप लोग ने सोच लिया होगा। बोलो। दृढ़ता, सारे गुण नहीं बताने हो तो सारे जरूरी हैं। किसी को दुख न देना, देने की भावना, रफ डफ नहीं बोलना। मूल्यां अच्छी याद है आपको, बहुत अच्छा। और कुछ? दुआएं जमा करना, बहुत अच्छा। तैवी गुणी तो पूछ रहे कौन से। हाँ, और बोलो। बहने बोले, बहनों से कम अच्छे उत्तर आए। अभी कलश बहनों के सिर पे है, भाइयों के सिर पे चला गया आज। बोलो। संतुष्टता, समर्पणता, क्षमाशीलता। पहले तीन चीजों पे चर्चा करेंगे। क्षमाशीलता, जिसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, हम उन्हें दिल से क्षमादान कर दें। और हमने किसी से कुछ किया है, उनसे क्षमा याचना कर लें। सूक्ष्म बात को जान लेना है। अभी लिखना छोड़ दें और सुने। द्वापर युग से अब तक जिन्होंने हमें कष्ट दिया हो या जिन्हें हमने कष्ट दिया हो, उन सब से हम बंधे हुए हैं। वाइब्रेशंस के द्वारा, और वो चीजें हमारे मार्ग में बाधा डालती रहती हैं, सफल नहीं होने देती, निरोग नहीं होने देती, आपस में प्यार से नहीं रहने देती हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं पहले, अभी का। मैं हिमाचल में एक जगह गया था, एक कुमार आया मेरे पास, कहा मुझे 10 साल से यहाँ हाथ में मत्स्य थे, काले काले उभर जाते थे, उन्हें कटवाते थे, बहुत पेन होता था, फिर उभर जाते थे, 10 साल हो गए थे पीड़ा सहते हुए। बहुत जल्दी बाहर आते थे, कटाओ फिर 5-7 दिन में बाहर। तो उसने क्या किया, रोज सवेरे 7 दिन तक उन आत्माओं से क्षमा याचना की जिनको पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, और पानी चार्ज करके हाथ को लगाया, और परिणाम 10 दिन में ऐसे ठीक हो गए कि दोबारा नहीं आए अब तक। देखो, मेडिकल साइंस से बहुत बड़ी शक्तिशाली साइंस हो गई क्षमा याचना। यही उनको कराना है जिनको डिप्रेशन है या नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती कि पूर्व जन्मों में, आपको बोलना, अब किसी की नहीं, बहुतों की नींद उड़ाई है, एक आधे की नहीं, बहुतों की उड़ाई है अपने व्यवहार से। क्षमा याचना करेंगे, नींद आएगी, डिप्रेशन भी जाएगा। एक भाई मेरे पास है अभी, उसके यहाँ सिर में ऊंचा सा फोड़ा सा निकल गया है, देखने में भी खराब लगता है, थोड़ी सी पीड़ा भी होती है, कभी सिर दर्द होता है। तो आज वो मेरे पास आएगा, मैंने उसको एनर्जी देना सिखाया था, उससे उसका ठीक नहीं हुआ, अब उसको सिखाना है क्षमा याचना। तो ये एक बहुत सुंदर बात है। एक गुवाहाटी का बहुत अच्छा अनुभव मेरे पास है, जहां से मैंने ये क्षमा का काम तेज शुरू कराया था। एक जैन परिवार की माता 11 साल से डिप्रेशन में थी, नींद भी नहीं आती, अति डिप्रेशन था, थोड़ा बहुत नहीं, दवाइयों का असर इतना था कि हर तीसरे चौथे दिन वो चक्कर खाके जमीन पे पड़ी होती थी, कहीं भी मुंह से पानी निकलता रहता था, कोई उसे उठा के लाते थे, इतनी दुर्गति थी उसकी। उसने ज्ञान लिया था अभी, तो दोनों मेरे पास आए, ये स्थिति है। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए ताकि मुझे ये समझ में आए इनके डिप्रेशन का बीज कहाँ है। पूछा मैंने, कितने बच्चे? 3 लड़कियां, 1 लड़का छोटा। लड़का कितने साल का? 11 साल का। जब उसने कहा 11 साल से डिप्रेशन और 11 साल का लड़का, तो मैं सोचा कि ये डिप्रेशन इसके लड़के से जुड़ा है कहीं ना कहीं। मैंने उसे पूछा, जब लड़के का जन्म हुआ तब तुम्हारी मनोस्थिति कैसी थी? कहा, मुझे खुशी नहीं हुई थी, 3 लड़कियों के बाद 1 लड़का हुआ, तो अभी मुझे खुशी नहीं हुई थी उसकी, और तभी से मेरा डिप्रेशन प्रारंभ हो गया था। फिर मैं और कुछ पूछता रहा, तुम्हें क्या क्या होता है, तो उसके मुख से एक सत्य बात निकल गई कि जब मैं अपने लड़के को देखती हूँ तो इच्छा होती है इसका गला घोट कर इसे मार डालूं, और कहा संकल्प पाते ही मैं जैसे पागल हो जाती हूँ, ये तुम क्या सोचा? मुझे नॉर्मल होने में 2-3 दिन लगते हैं, फिर वही संकल्प उभरता है, इसका गला दबा दूं, इसे मार डालूं। गुस्से से आता है वो संकल्प, हल्के से नहीं, अंदर के क्रोध से। हमें इसके डिप्रेशन का कारण समझा, मुझे फट से टच हुआ, मैंने उसे बताया, और देखो इसी से उसका समाधान हो गया। मैंने कहा, तुम दोनों पूर्व जन्म में शत्रु थे, दोनों की लड़ाई हुई, तुमने उसका गला पकड़ा, उसने तुम्हारा, उसने तुम्हें मार दिया था, तुम दबाया गला, तुम कुछ कर नहीं पाए, तो वो जो तुम्हारी अपूर्ण इच्छा है वो थी, अभी वही आत्मा तुम्हारा लड़का बनकर तुम्हारे घर में आ गई हिसाब लेने, न तुम उसे प्यार दे सकती क्योंकि वो तुम्हारा शत्रु है पूर्व जन्म का, न मार सकती क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, तो क्या करूं? तो मैंने कहा, इसे क्षमा कर दो, 21 दिन करना, इसे क्षमा दान देना, आत्मा देखकर के पूर्व जन्म में तुमने मुझसे जो भी किया मैं तुम्हें सच्चे मन से क्षमा करती हूँ, और रात को 108 बार लिखना मैं एक महान आत्मा हूँ। और परिणाम इतना सुंदर हुआ कि 11 साल का डिप्रेशन 11 दिन में ठीक हो गया, उसने 21 दिन भी नहीं किया, 11 दिन में ठीक हो गया। फिर मैं दोबारा जब वहां गया तो मैंने, मुझे अपने घर ले गए वो, तो मैंने कहा, तुम्हारा लड़का कौन सा है मुझे दिखाओ तो सही, तब तक वो 13 साल का हो गया था। अब वो बहुत खुश था और इस माँ का मन बिल्कुल शांत हो गया था। ये पूर्व जन्मों के कर्मों का ऐसा खेल है। एक और तीसरी घटना सुना देता हूँ, जोधपुर की सच्ची घटना। एक डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध वहां का, ऐसी बीमारी हुई कि मृत्यु तक पहुंचने लगा। तो वकील है अपना एक, जानते होंगे महेश्वरी, हाईकोर्ट का, उसका फ्रेंड था, उसको उसने कहा, भाई आप लोग योग आदि करते हो, उसके परिवार वालों ने, कुछ देखो क्या हो सकता है। तो वहां एक संदेशी बहन है, उसने ध्यान में देखा, बाबा ने उसको सीन दिखाया कि ये डॉक्टर पिछले जन्म में राजकुमार था, अपने बगीचे में बैठा था, एक ब्राह्मण आ गया बगीचे में और दोनों की किसी बात पे कहा सुनी हो गई, इसने तलवार से उसे वहीं मार दिया। कहा उस ब्राह्मण का श्राप अब काम करने लगा है, इसको जीने नहीं देगा, क्या करे, उससे क्षमा मांगे। और उस व्यक्ति को, डॉक्टर को, जो बिल्कुल मरने तक पहुंचा हुआ था, ये बात रियलाइज हुई कि सत्य है, उसने वहीं से क्षमा याचना शुरू की और 15 दिन में बिल्कुल ठीक होके घर वापस आ गया। ये ऐसा सुंदर इफेक्ट है, इसको सभी को यूज करना है। किसी के किसी से संबंध बिगड़े हुए हों, क्षमा याचना करें। एक माता आई बाबा के सीजन में, चेहरा उदास। मैंने बैठते ही पूछा कि कल बाबा से मिली हो, खुशी नहीं हुई? कहा खुशी तो बहुत हुई, पर मुझे एक समस्या है, मेरी लड़की 7 साल की है, थोड़े में बता रहा हूं, मुझे खाने को रहती है सदा तैयार, खा जाऊं मां को। कहा सबको बड़ा प्यार करती है, उसका छोटा भाई है, उसका पापा और घर में लोग, और मुझे देखेगी तो आंखें लाल एकदम, उसी से फील होता है। मैं समझ गया बदला लेने आई आत्मा। मैंने इसको सिखाया क्षमा याचना करो और रोज आधा घंटा उसे योगदान करो। 7 दिन में ठीक हो गया, लड़की स्वीट हो गई, उसका भी जो एग्रेसिवनेस थी बहुत ज्यादा, भारीपन एकदम क्रोध, वो बिल्कुल शांत हो गया। तो करेंगे सभी को क्षमा या कुछ को नहीं करना चाहते? किसी ने ऐसा सताया हो कि उसे नहीं माफ करना? सोच लो, एक भाई था ऐसे ही, क्षमा पे क्लास हुई, उसने, हम क्लास में ही कराते हैं ये सब, क्लास के बाद उसने कहा मैंने सबको क्षमा कर दिया सिवाय अपने एक लड़के के। क्या लड़का? 25 साल का है, मेरी इच्छा के विरुद्ध विदेश में गया अमेरिका, शादी कर ली, अब मेरे से जैसे दुश्मनी का व्यवहार करता है। मैं कभी फोन कर दूं तो पहले ही कहेगा क्यों फोन किया मुझे, ये टाइम है क्या फोन करने का? तो मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। उसको फिर बाहर थे हम, क्लास पूरी हो गई थी, उसको समझाया कि तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम भी परेशान रहते हो, कम से कम अपनी शांति के लिए तो कर दो, वो जैसा अब तो है ही, उसको तो तुम नहीं बदल सकते, पर तुम तो खुश रहो जीवन में, वो तो गया। तो कुछ देर के बाद ये सहमत हो गया कि मैं उसको भी, चलो क्षमा किया, वहीं कहा उसको भी क्षमा किया। मैंने कहा रात को सोते और सवेरे फिर कर देना। फिर अगले दिन आके बताया कि 9 बजे ही लड़के का पहली बार फोन आया और कहा पापा मैंने बहुत गलती कर दी है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं जल्दी ही आऊंगा आपके पास। कहा इसने क्षमा किया और उसने क्षमा मांगी, कितनी जल्दी काम हो गया। इस सूक्ष्म गति को समझ के ये काम करना है सभी को। रेड लाइट कर दो भाई, सबको क्षमा कर देना, हजारों आत्माओं को जिन्होंने 2500 साल में गड़बड़ की है, हमने भी की है। चलो चाहे अब आंख बंद करो या खुली करो, पहले इस स्वमान में स्थित हो जाएं, मैं इस धरा पर एक महान आत्मा हूं। अब संकल्प करें पिछले 63 जन्मों में जिन आत्माओं ने भी मुझे कष्ट दिया है वे सभी प्रकट हो जाएं। स सामने देखें अपने हजारों आत्माएं सूक्ष्म शरीरों में इमर्ज हो गई, अब सच्चे मन से संकल्प करें, हे आत्माओं, आपने मुझे अज्ञानवश, विकारोंवश कष्ट पहुंचाया, मैं आप सभी को क्षमादान देती हूँ, देता हूँ। सुखी भव, तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, तुम्हारा भी कल्याण हो। अब देखेंगे सभी आत्माएं धीरे धीरे लोप होने लगी, अब दूसरा संकल्प करें, जिन आत्माओं को मैंने कष्ट दिया है वे सभी मर्ज हो जाएं, और उसी तरह हजारों आत्माएं सूक्ष्म देह में प्रकट हो गई। अब संकल्प करें, मैंने आपको अज्ञानवश कष्ट दिया, मैं सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ, मुझे क्षमादान दें और प्रसन्न हो जाएं। अपने क्रोध को शांत कर दें, तुम्हारा कल्याण हो। धीरे धीरे आत्माएं लोप हो गई, ओम शांति। सात दिन तक कर लेना ये, सवेरे ही करेंगे तो बहुत अच्छा, 6 बजे तक ये रस्सियां कट जाएंगी जो आपको बांध रही हैं। परिवार में कोई आपको कष्ट दे रहा हो, किसी को क्रोध बहुत हो, कोई आपसे बहुत लड़ाई करता हो, आपके मार्ग में आप दीवार बनकर खड़ी हो गई हो कोई आत्मा, ऐसी बहुतों के साथ है ये कहानी। एक ही आत्मा के कारण पुरुषार्थ नहीं होता, उससे भी क्षमा याचना करेंगे। और माताओं को सभी को करना है, विशेष रूप से भोजन बनाते हुए क्या अभ्यास, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस बात को बहुत अच्छी तरह सब महसूस कर लें। आप अगर 100 बार ये संकल्प करके भोजन बनाती हैं तो भोजन में पवित्र किरणें भर जाएंगी और जो उसे खाएगा उसका कल्याण होगा। किसी को क्रोध आता है, एक माता पूछ रही थी मेरे से, सुन ले ध्यान से, वो क्रोध आता है किसी को, उसको वो भोजन खिलाते हुए संकल्प करेंगे, इस पवित्र भोजन को खाकर इसका चित्त शांत हो जाए। कोई घर में शराब पीता है, इसे खाकर इनका ये व्यसन छूट जाए, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, इसे खाकर इसकी बुद्धि का विकास हो जाए, ये आप संकल्प करना। ये जान लें कि हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, हमारे संकल्प काम करते हैं, वो निष्फल नहीं जाते। और माताएं विशेष रूप से जान लें, यदि आप अपने बच्चों की बहुत चिंता कर रही हैं तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, आपसे निगेटिव एनर्जी उस बच्चे को जा रही है, उसका कल्याण होगा जो आप नहीं चाहते या चाहते हैं। मैं सोच समझ के पूछ रहा हूं, चाहते हैं कल्याण अपने बच्चों का? कल्याण चाहते हैं तो उन्हें गुड वाइब्रेशंस दो। आपकी चिंताएं, आपका कुछ भी सोचना, आपका दुखी होना, माना उनमें और गिरावट आना। मैं एक अनुभव सुना देता हूं, इधर बैठ जाओ खाली है, मैं एक अनुभव सुना देता हूं आपको बहुत अच्छा, अभी अभी का। मैं अभी कल ही आया हूं कहीं से, एक माता आई, युवक जो भी बैठे या आप अपने युवकों को ये बात समझाएंगे, उसका लड़का ज्ञान में भी है, आईएएस का एग्जाम दे रहा था, 3 बार असफल हुआ। बात तो खराब है, कोई भी निराश होगा, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि सभी तो आईएएस नहीं हो सकते, कई लाख स्टूडेंट बैठते हैं हर साल, उनमें से 500-700 जितनी सीट खाली है उतना चुना जाता है, सब तो हो नहीं सकते। तो ये लड़का डिप्रेशन में आ गया, बहुत निराश हो गया, यंग मैन बिल्कुल निराश, एकदम चेहरे की खुशी, सब कुछ जो होता है मनुष्य जीवन में खत्म। उसको देख के ये माँ परेशान बहुत, ये भी ज्ञान में। तो इसकी बहन मुझे मेरे पास लाई 4 दिन पहले उसको, मैंने उसको बहुत समझाई ये बात, वही आपको कह रहा हूं। पहले युवक ध्यान दें, जीवन का लक्ष्य बड़ा बनाना सबसे अच्छी बात है, अच्छे से अच्छा टारगेट बनाया जाए, लेकिन जो प्राप्त हो जाए उसे सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। अब वो डिप्रेशन में आ गया, उसके कारण माँ परेशान, मैंने माँ को कहा तुम भी डिप्रेशन में आ रही हो, चेहरा उसका बता रहा था, तो तुम ये सोचो जो मालिक है घर का तुम्हारा पति, उसका क्या हाल होगा कि वो परेशान रहने लगा हम दोनों को देख के। अब तीनों ही जाएंगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा, इसलिए क्या करना चाहिए, माताओं को कह रहा हूं मैं, थोड़ा समझदार बनो, इतना इमोशनल नहीं, इतनी भावुक नहीं कि अपनी स्थिति बिगाड़ लो। आपकी स्थिति बिगड़ी माना बच्चे को निगेटिव एनर्जी जाएगी, ये बात उसको मैंने समझाई। अगले दिन फिर क्लास थी तो देखा उसके चेहरे में थोड़ी रौनक आई, आगे बैठती थी, थोड़ा बदला। अगर हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं तो अपने को तो ठीक रखना पड़ेगा या नहीं। डॉक्टर पेशेंट का इलाज करने जाए और बीमार होके आ जाए, डॉक्टर साहब वायरस ले आए सारे साथ में, तो कैसे काम चलेगा। तो लक्ष्य ऊंचा रखें, लेकिन जो प्राप्त हो जाए, मान लो असफल हो गए, तो समझ लें ये ड्रामा में नहीं था, कल्याणकारी है। नहीं बनाना चाहता बाबा उस तरफ, आगे आईएएस आईपीएस ही तो सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे, जब विनाश होगा सबसे ज्यादा परेशानियां इन्हें होंगी। हो सकता है बाबा आपको योगी बनाना चाहता हो, तो बाबा को भी पहचान कर अपनी स्थिति को ठीक करें। समझ रही माताएं? भाई लोग तो जल्दी जरा बाहर रहते हैं ना, अनेक बातें सुनेंगे सुनाएंगे, वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, टेंशन से भी बाहर आ जाते हैं जल्दी, लेकिन माताएं घरों में रहती हैं तो वही वही सोचती हैं, बार बार उसको देखेंगी वही सोचेंगी, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए घरों से बाहर जाके सेंटर में सेवा भी करनी चाहिए, थोड़ा मिलना जुलना चाहिए आपस में, अच्छी वार्तालाप हो तो डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। ठीक है, पसंद है, एक चीज और सीख लें जीवन में, जो सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो जबरदस्ती सीखना पड़ेगा, नहीं चलेगी गाड़ी। विनाश की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं और वो सब कुछ होगा जो हम देखना नहीं चाहते। ये संसार खाली हो जाएगा, ये धरा खाली होनी है, जो आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। होगा या नहीं ऐसा? तैयार हैं आप इसके लिए? सोच लो जरा। माताएं तैयार हैं या सोचती हैं सबका विनाश हो जाए, हमारा नहीं, हमारा परिवार ऐसा ही रहे, सबके घर टूट जाएं, हमारा मिट्टी का घर रहे, सतयुग में इसी में रह लेंगे, क्या दिक्कत है? सुख तो वहां होगा ही, शांति, भरपूरता। क्या सोचते हैं आप सभी, जरा विचार करो। बाबा ने रोका हुआ है विनाश काल को, अभी थोड़ा कुछ तैयारी करा रहा है बाबा, कुछ आत्माओं को प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो संसार को बहुत कुछ देने के समर्थ हो जाएं। फिर ये खेल ऐसा चलेगा कि किसी से रुकेगा नहीं, क्योंकि अब ये सृष्टि प्रभु प्लानिंग के अनुसार चलेगी। अब तक रावण की प्लानिंग से चल रही थी, अब बाबा ने ये बागडोर अपने हाथ में, बस थोड़े दिन में वो ले लेगा, जो काम उसे करना है वही होगा, किसी मनुष्य की कोई प्लानिंग यहां नहीं चलेगी। तो बेफिक्र बादशाह, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, साक्षी होना और समर्पण भाव से जीना, इसकी बहुत जरूरत रहेगी। शुरू करें आप ये चारों चीज अभी से। साक्षी भाव, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। पहले क्या स्वीकार करना है? जिन चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है उन्हें स्वीकार कर लें। देख लो अपने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें, घटनाएं, व्यवहार, बच्चे ऐसी है जिनको हम बदल नहीं सकते। मेरे पास तो बहुत आजकल समस्याएं आती है ना लोगों की, बच्चे ने जन्म लिया, 3 दिन के बाद पता चला दोनों किडनी फेल हैं बच्चे की। मेडिकल साइंस शायद इसका उत्तर नहीं देगी, डॉक्टर मेडिकल साइंस के पास इसका उत्तर नहीं, क्यों ऐसा है। बेंगलोर में मैं था, एक सिविल सर्जन ज्ञान में आ रही थी, उसने मेरे से यही प्रश्न किया, 5 साल की लड़की आई है कल कैंसर लेकर, सीवियर कैंसर का, हमारी मेडिकल साइंस इसका जवाब नहीं दे रही, 5 साल में कैंसर कैसे हो गया? बच्चा जन्म लिया, जन्मते ही छेद है, बच्चे ने जन्म दिया, थोड़े दिन के बाद जो चेकअप हुआ तो डायबिटिक है, शुगर है उसको। तो जैसे हेरिडिटरी है ना मेडिकल में, माँ बाप से बच्चों को आती है, एक हेरिडिटरी और है जो मेडिकल साइंस नहीं जानती, पूर्व जन्मों से भी चली आती हैं बीमारियां। माँ बाप को तो शुगर है ही नहीं, बच्चों को शुगर, जन्म लेते ही बच्चे को शुगर। तो एक हेरिडिटरी जन्म जन्म चली आ रही है, इसका इलाज ज्ञान योग है। ऐसे में उसको स्वीकार करना ही बहुत अच्छी बात है। स्वीकार करके अपनी स्थिति को बैलेंस में रखकर हम कुछ कर सकते हैं, किया सब चीजों के लिए जा सकता है। मैं एक अनुभव और सुनाऊं आपको, ये अनुभव भी बहुत सुंदर रहा मेरे पास। हर चीज के लिए किया जा सकता है, योग बल से बाहर कुछ भी नहीं है। जहां मेडिकल साइंस पूरी फेल है वहां स्पिरिचुअल साइंस पूरी सफल है। एक अनुभव सुना, ऐसे कई अनुभव हो चुके हैं, एक सुनाता हूं। एक मां ने फोन किया, बात ये पिछले साल की है, 13 की, मेरा लड़का 5 साल का जन्म से ही विकलांग है, न ब्रेन बहुत अच्छा, न हाथ, न पैर, न रोता, न हंसता, मैं उसे देख देख कर दुखी रहती हूं। میں نے اس کو تیار کیا, تم کرو گی جو میں بتاؤں تمہیں؟ کہا میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار, ماں ہے. میں نے پوچھا تمہیں بھاونا ہے کیا کہ جو میں بتاؤں گا اسے ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ موسٹ امپورٹینٹ بات ہے, اگر اس کی بھاونا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا میری پوری بھاونا ہے, جو آپ مجھے کہو گے اس سے بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اب میں نے کہا تو 21 دن کے لیے لکھو جو میں بتاتا ہوں, آپ بھی چاہیں تو لکھ لیں. ان روگوں کو ٹھیک کرنے کی ایک بہت سندر ودھی ہے ویژن بنانا, چتر بنانا, چتر. تو میں نے کہا تم سوتے اور اٹھتے ہوئے چتر بنانا من میں کہ میرا بچہ 21 دن کے بعد آنگن میں کھیل رہا ہے, ہنس رہا ہے. ایک کام, یہ ویژن ہر بیماری کے لیے بنایا جا سکتا ہے, سوتے وقت بالکل اور جگتے ہی اس کو لاسٹ تھوٹ اور پہلا تھوٹ بنا دو کچھ دن, 3-4 دن بس. ایک بار میں بھی کام ہو سکتا ہے, پر اس میں چاہیے وشواس کہ یہ ہوگا. سیکنڈ امپورٹینٹ بات, بھاونا کے ساتھ اب جو ویژن بنایا اس میں وشواس کہ یہی ہوگا. اب دوسری چیز جو آپ سب جانتے ہی ہوں گے, پانی چارج کر کے پلانا, دودھ پانی بچہ جو پیتا ہو کھاتا ہو اسے چارج کرنا, اس سنکلپ سے میں پرم پوتر آتما ہوں. تھوڑا تھوڑا, میں نے کہا 2 چمچ بھی پانی ڈالو نا منہ میں, وہ چارج کر دو گلاس میں پہلے ہی اس سنکلپ سے, 7 بار کر کے, 21 بار کر کے. تیسرا تھا 1 گھنٹہ اس کے لیے پاورفل یوگ 21 دن, تاکہ وہ وکرم وناش ہو جائیں جس کے کارن اس کو ایسا جنم ملا ہے. یوگ پاورفل ہونا چاہیے, سنکلپوں والا یوگ نہیں, چنتا والا یوگ نہیں, بابا سے شکایت کرنے والا نہیں, بابا میرے بچے کو ٹھیک کر دو, یہ نہیں. پاورفل یوگ, بس بابا کی کرنیں, اور سنکلپ کر دو یہ یوگ اس آتما کے لیے, تو وہ یوگ اس کو جائے گا سب سنکلپ سے ہی. اور چوتھی چیز بہت پاورفل ہے, آپ سب نے سنا ہوگا ٹی وی پہ بھی, ہاتھوں سے برین کو انرجی دینا, بچے کے برین کو انرجی دینا ہے. میں آپ کو کرا دیتا ہوں یہ ودھی ابھی اپنے ہاتھ سے, میں بتاؤں گا کیسے کرنا. اس نے یہ سب کام 10 منٹ انرجی دینی تھی سویرے, 10 منٹ شام کو, کیونکہ بچہ تو جیسے ہے ہی نہیں نا, وہ تو ڈیڈ جیسا ہے. اور یہ بہت خوشی کی بات تھی, 22 دن سویرے 6 بجے مجھے فون آیا, بھائی جی میرا بچہ آنگن میں کھیل رہا ہے, آواز سنوائی فون سے, ہنس رہا ہے. میں نے کہا تم ہو کون, مجھے کیا پتا کس کا بچہ, میرے کو تو روز ایسے کتنے فون آ جاتے ہیں. پھر اس نے بتایا, میں نے کہا پہلے پریچے تو دیا جاتا ہے فون سے پہلے, کہ میں تو بھول گئی خوشی میں 21 دن پہلے آپ نے یہ بتایا تھا, 22 دن پہلے. بہت ہی گڈ ریزلٹ, مجھے بھی بڑا آنند ہوا کہ دیکھو یوگ کی شکتی, بابا کی شکتیاں, اپنا وشواس کیا کیا کر سکتا ہے. ایک اندھی ماتا 75 سال کی, ستنا مدھیہ پردیش, 17 دن میں اس کی آنکھیں لوٹ آئی, جوتی لوٹ آئی 17 دن میں. یہی 4 پریوگ اسے کرائے تھے, اس میں پانی کو چارج کر کے آنکھوں پہ بھی ڈالنا تھا, پینا بھی تھا تھوڑا, آنکھوں کو انرجی دینا. اب انرجی کیسے دی جاتی ہے, ڈائری پین نیچے رکھ دو اور دیکھو کرو سبھی, ہاتھ ملیں گے ایسے, بہت گڈ فیلنگ سے سنکلپ کریں, 3 بار کرنا, میں ماسٹر سرو شکتیوان, آنکھیں بند کر کے کرو اور اچھا کنسنٹریشن ہوگا, میں ماسٹر سرو شکتیوان ہوں, میں ماسٹر سرو شکتیوان ہوں. ابھی دیکھو, کھولو آنکھ, اپنے ہاتھ چھوڑ دو, بہت دور نہیں, 6 انچ کی دوری, دیکھو آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے. اب راہل بھائی لگ گیا نا, یہ بہت بڑی انرجی آ گئی, اس کو برین پہ رکھا, سنکلپ کرو میرا برین پرفیکٹ ہو جائے, شانت, ये एनर्जी ब्रेन को जाके एक्टिव कर देगी, ब्रेन को जो डल हो गई हैं चीजें, कहीं ब्लड नहीं जा रहा, कहीं कोई नसें दब गई, जो कुछ भी हुआ हो, तो मेडिकल साइंस भी नहीं जानती ब्रेन के बारे में, सारा किसी को पता नहीं। दो बच्चों का ऐसा केस जो हाइपर एक्टिव बच्चे, समझते हैं इंग्लिश शब्द ये, ऐसे बच्चे तूफानी। पानी पानी गिलास में लो, उसे दृष्टि दो, सात बार संकल्प कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो पानी में ये वाइब्रेशंस भर गए। ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, और वो पानी निगेटिव वाइब्रेशंस के कारण गंदा, कहीं सेल डेड हो गए हैं, वो बिल्कुल काला हो गया पानी। ऐसा चार्ज पानी जब हम पिएंगे, सदा ही पीना चाहिए हर व्यक्ति को, तो वो पानी पानी में मिक्स होगा और उस पानी को पवित्र करेगा। आप फोन सुनते हैं बहुत, और बैड एनर्जी कानों आंखों से जाती है, वो सब इस चार्ज पानी से ठीक हो जाती है। तो हाइपर एक्टिव बच्चे, जिनको कोई स्कूल भी नहीं लेता था पढ़ाने के लिए, माँ बाप को परेशानी थी कि इनका करें क्या, घर में उनको संभालने के लिए नौकर चाहिए, घड़ी देखेंगे उठा के फेंकेंगे, गिलास में दूध रखा उठा के फेंकेंगे, ऐसा हाल 21 दिन में नॉर्मल। ब्रेन को एनर्जी देने का वंडरफुल इफेक्ट देखने में आया। ये सब चीजें अपनाएंगे, आगे चलें, समर्पण भाव और साक्षी भाव दोनों ही बहुत सुंदर धारणा है। ये थेरेपी आप शुरू कर लो अपने अपने घरों में, माताएं सभी, क्योंकि विनाश काल में दवाई नहीं मिलेंगी, तो माताओं को डॉक्टर बनना पड़ेगा। एक तो घर में कुछ ना कुछ काढ़ा बनाना सीख लो, हर चीज का, लौंग डाली, काली मिर्च डाली, सौंफ डाली, तुलसी डाली, नीम के पत्ते डाले और काढ़ा बना दिया, और पिला दो दृष्टि देके, योग करके, जो पिए वो ठीक, सर्दी जुकाम खांसी सब ठीक, अर्थराइटिस ठीक, ये सब होगा। खूब अपनी पावर को बढ़ा देना है और बहुत विश्वास के साथ देना है। ये विश्वास ही बहुत बड़ी चीज है ना दुनिया में। एक किताब निकली थी, उसमें लिखा था फ्रांस में एक लेडी साइंटिस्ट को पैरालाइज हो गया, इलाज बहुत कराए कुछ हुआ नहीं। उसके साथी ने कहा कि चर्च में जो पादरी है वो पानी देता है, उससे बीमारियां ठीक होती हैं, तुम भी ले लो। उन्होंने कहा ये मेरा इनमें विश्वास नहीं है। नहीं है तो भाई नहीं, सही ठीक है ना, लो, किसी का कुछ जाता तो नहीं है। आखिर उसकी तकलीफ बढ़ती गई, कई लोग उसको कहते रहे, उसको भावना बैठा दी कि उस पानी को पीने से सब ठीक हो रहे हैं, तुम भी हो जाओगी। आखिर उसका ईगो खत्म हुआ और उसने मान लिया कि पानी पीने से मैं ठीक हो जाऊंगी। पादरी के वहां से चर्च से पानी लाया गया, रोज उसको पिलाना शुरू किया, इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, कुछ दिन में वो ठीक हो गई। वो पादरी के पास पहुंची, इस पानी में क्या मिलाते हो? उन्हें कहा कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ ये जो मूर्तियां हैं ना क्राइस्ट आदि की, इनके आगे रख देता हूँ, लोग पीते रहते हैं, भावनाओं का खेल है, आपको भावना हो गई ठीक हो गए, कुछ भी नहीं उसमें, भावनाएं विश्वास। और हम तो पानी को चार्ज कर रहे हैं, ईश्वरीय शक्ति भर रहे हैं उसमें, तो ये तो जादुई काम करता है, जादुई काम। सोराइसिस जैसी स्किन डिजीज जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, 4-5% ठीक हो गए। सोराइसिस एक चर्म रोग है जो ठीक नहीं होता और बड़ा पीड़ा देता है सर्दी में, पानी चार्ज करके लगाया और पिया, इसी से ठीक हो गए। तो ये सब विधि अपनाएंगे, क्षमा याचना करेंगे। अब है, पहले लेते हैं साक्षी भाव। मैं केवल दो पॉइंट आपको बताता हूँ। साक्षी का अर्थ है ड्रामा के ज्ञान को यूज करके इस खेल को खेल की तरह देखना, जैसे खेल चल रहा है संसार का। जैसे हम फिल्म देखने जाएं, कोई हम फिल्म देखते हैं, एक्टर्स पार्ट बजा रहे हैं उसमें, तो इस खेल को साक्षी होकर देखना। इसके लिए आप पहली बात याद रखेंगे बाबा की, जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे ही तुम भी देखो। क्यों देखता है बाबा? अब यज्ञ में भी तो बाबा के कई चीजें होती रहती हैं, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल पहले कोई एक अच्छा कांड हो गया, बाबा आए, बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बन जाओ, टेंशन फ्री। हम तो सोचते रह गए भगवान को कोई टेंशन नहीं होती, हम भी ऐसे ही बन जाएं। जबकि किसी की फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो रही हो तो मालिक को कष्ट होगा, ठीक करेगा वो। बाबा कहता है मैं बैठा हूं ना, तुम सोचो ही नहीं, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर देकर बाप से फकुर ले लो और बेफिकर बादशाह बन जाओ। ये तब की मुरली थी। मैं तो बहुत सोचा कि देखो बाबा की स्थिति, अब तो दोनों की यही है, ऐसी स्थिति हमारी भी हो। अब 2 बातें जो मुझे कहनी है, जिसकी प्रैक्टिस मैं भी बहुत की जीवन में, आप भी शुरू करो। पहली, इस ड्रामा में हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। विचार करना इस पे, जो आपको तंग कर रहे हैं उनका भी दोष नहीं है। क्यों? ड्रामा बना बनाया। आप कहेंगे क्यों बना ऐसा? क्योंकि आपने भी उसे तंग किया था। हरेक आत्मा के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार उसके कर्म ही हैं। बिना कारण किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है। कोई सीढ़ी से उतर रहा है, गिर जाता है, बिना कारण नहीं। कोई दोष दे, इन्होंने चिकना टाइल लगा दी है इसलिए मैं गिरा, पानी डल गया इसलिए मैं गिरी, इससे काम नहीं चलेगा। आप ही क्यों गिरी? 10 और भी तो उतरे, वो क्यों नहीं गिरे? तो बिना कारण किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। जरा समझा दें अपने को, पढ़ा दें। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। अपने को चेंज करो, सब चेंज हो जाएगा। जब तक अपने को चेंज नहीं करेंगे, दूसरों को दोष देते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। पसंद है ये बात? पसंद है? इस तरह अपने चित्त को शांत करना है। गुस्सा रहता है ना मन में, अब मेरी ओर देखो, उन्हें बात करने दो। गुस्सा रहता है ना, इसने मेरे से ऐसा किया। बिल्कुल, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मनुष्य दूसरे को दोष दे। मैं तो ठीक हूँ, इन्होंने गड़बड़ की। अब इसको साक्षी होके देखेंगे। दूसरी बात, दूसरी कहो या तीसरी कह लो, ये बहुत पावरफुल है, बहुत काम करना पड़ेगा इस पर। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। ये बाबा के महावाक्य हैं। वही होना चाहिए। घटना ही सुना देता हूँ, 1-2 बार ये महावाक्य बाबा ने उच्चारे हैं। ये मेडिटेशन हॉल बना नहीं था, उससे पहले की बात है। दीदी मनमोहिनी को कुछ हुआ और खून की उल्टियां हो गई। जिन्होंने देखा उनका हाल खराब हो गया। खून की उल्टी छोटी बात नहीं होती ना, वो तसला होता है, उसमें खून भर गया, 1.5 किलो खून गिर गया मुंह से। तो बाबा आए 4-5 दिन के बाद, तब तक दीदी ठीक हो चुकी थी। बाबा ने पूछा जिन्होंने ये सीन देखा उनकी स्थिति कैसी रही, सबने बताया भाई खराब हुआ, हमें देखना देखा नहीं गया। बाबा ने तब ये महावाक उच्चारे थे, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। ये दूसरी लाइन भी बोल दी, वही होना चाहिए। हम तो देखते रह गए बाबा को, भगवान के सिवाय तो कोई ये कह नहीं सकता, खून की उल्टी हुई यही होना चाहिए, भगवान के सिवाय ये कोई नहीं बोलेगा। गुरु भी होगा तो कहेगा बड़ा खराब हुआ, बुरा हुआ, चिरंजीवी भव, सदा निरोग भव, ऐसे कहेंगे। और भगवान कह रहा है यही होना चाहिए, क्योंकि उसे दिख रहा होगा शायद अंदर गंदा खून था, वो उल्टी से बाहर निकल गया, ठीक हो गया काम, नहीं तो बीमारियां पैदा करता, उसको तो कुछ दिख रहा होगा ना आगे का। तब से मुझे ये बात बहुत ही गहरी नजर आई और मैं इस पे काम करना शुरू किया। आप भी करें, संसार में रोज ही अनेक सीन हरेक के साथ हो रहे हैं, जरा अपने को याद दिलाया करें, जो हो रहा है वही सत्य है, कर्मों के अनुसार वही होना चाहिए। ये सब दौर जोड़ लें, कर्मों के अनुसार यही होना चाहिए, तो हमारा चित्त शांत होगा और इस साक्षी भाव के साथ हम अपने कर्तव्य कर सकेंगे। साक्षी भाव का यह अर्थ नहीं होता कि हम अपने कर्तव्य न करें, हम अपने कर्तव्य पालन कर सकेंगे। अगर हमने अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें कर लेना चाहिए था। वाइब्रेशंस देना बहुत बड़ी मदद है दूसरे के लिए, बहुत बड़ी। वाइब्रेशंस की गति पर अगर कोई चिंतन करे, सबके बस का नहीं चिंतन करना, तो आपको समझ में आएगा कि वाइब्रेशंस कमाल का काम करते हैं। आपने किसी व्यक्ति के लिए सोचा ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये आपके वाइब्रेशंस उसमें चेंज लाएंगे एक बार सोचने से भी, और आपने सोचा ये बड़ा पापी है, उसके पाप को बढ़ाएंगे। इसलिए मैं सबको कहा करता हूं कि ये संकल्प अब छोड़ दो कि सारे नेता खराब हैं। नेताओं के लिए दृष्टि बदल गई थी ना सबकी, सारे करप्ट हैं, सारे खराब हैं, काम नहीं करते, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो सब बिगड़ते जाते हैं। अब महान आत्मा ये संकल्प करो सब अच्छे हैं, ये हमारे नेता अब देश का कल्याण करे, तो नेता दूसरे आ गए, अब ये हमारे देश का कल्याण करेंगे, तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम करेंगे। वाइब्रेशंस के आधार से आत्मा गर्भ में जाती है, वाइब्रेशंस के आधार से उसका देह बनता है, केवल माँ बाप के आधार से नहीं, उनके जीन से नहीं, उसके अपने वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं। इसलिए कहीं गरीब किसान घर के पास एक बुद्धिमान बच्चे का जन्म हो जाता है, माँ बाप को बुद्धि नहीं और बच्चा महान बुद्धिमान जन्म ले लेता है। कहीं अति बुद्धिमानों के घर बिल्कुल डल बुद्धि वाले जन्म ले लेते हैं, तो माँ बाप नहीं, उसके अपने वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं। देखो जब हमारा हॉस्पिटल बना ग्लोबल, तो मैं डॉक्टर्स की कभी कभी क्लास होती थी, उनसे एक प्रश्न पूछता था कि क्या सूक्ष्म शरीर में ब्रेन होता है, आप भी सोचो होता है नहीं, बोलो। बुद्धि होती है, ब्रेन नहीं होता, बोलो। भिन्न भिन्न उत्तर सुनाओ, मैं सुनू। मन बुद्धि संस्कार तो होते ही, हम ब्रेन की बात कर रहे, ब्रेन स्थूल है, बुद्धि अलग ब्रेन अलग, बोलो डॉक्टर बताएं, ब्रेन नहीं होता। अब सोचो ऊपर ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में, उनको ब्रेन है या नहीं, उनको तो है, बाकी को नहीं होता। अगर ब्रेन ही नहीं होगा तो आंखें देखेंगी कैसे, बिना ब्रेन के ये कर्मेंद्रियां काम नहीं करती। सूक्ष्म शरीर में भी ब्रेन होता है, मन बुद्धि संस्कार के साथ ब्रेन भी। अब यहां सोचने की बात यह है कि ब्रेन की रचना सबसे सूक्ष्म है और वो भी वाइब्रेशन से बन जाता है। इस पर अगर डॉक्टर काम करें तो वाइब्रेशंस देकर अनेक चीजें ठीक कर सकते हैं। अब है समर्पण भाव। इसी बीच में समर्पण भाव से ही जोड़कर मैं एक सुंदर बात आप सबको कहना चाहूंगा। मैं और मेरे पर अव्यक्त मुरली सभी सुन चुके हैं 15 दिन पहले, कल संडे आ रहा है, 14 दिन पहले। मैं और मेरा करो याद, बहुत था डिटेल था। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में इसलिए गए, मैंपन को सबसे पहले त्याग कर दिया। अस्वतन बनने का आधार भी यही है, समर्पण से जुड़ा है। सब कुछ तेरा, मेरे पास जो कुछ है वो भी तेरा, बुद्धि भी तेरी दी हुई। हमारे पास ये अच्छी बुद्धि कहां से आई? ऊपर से मिली है। हमारा मन अच्छा कैसे बना? बाबा ने बनाया है। धन तन बुद्धि संबंध बच्चे मकान सब तेरा, कर्म भी तेरे। अब गहरी बात है, कर्म तुम्हारे लिए। अपने घर को सभी यज्ञ बना दो। ये मेरा घर नहीं, बाबा का क्या है? यज्ञ है। क्या है पीछे वाली माताएं भाई लोग? तो जब हम उसमें काम करेंगे वो क्या हो जाएगा? यज्ञ सेवा। कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। अब वो कर्म आपको बांधेंगे नहीं, वो कर्म आपके पुण्य में जमा होने लगेंगे, भाग्य निर्माण होगा। अपने जीवन को भी यज्ञ बना दें और घर परिवार को बाबा का यज्ञ मान लें। शुरू करो आज से काम, यहीं से देख लो अपना घर, ये बाबा का यज्ञ है। तो मेरा हर कर्म बाबा के लिए है, मेरे लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, बाबा के लिए। पैसे तो आप ही मिलेंगे, बाबा के लिए। बुद्धि तेरी, इससे मैंपन को समाप्त करते चलना है। तो मैं जो अपने लिए एक बात यूज करता आया हूँ बहुत सालों से, वो आपको भी सुनाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है मैंपन छोड़ने में। ईगो अहंकार अपनी जड़ें इतनी ज्यादा फैला चुका है अंदर कि उसको पहचानना, उसे मुक्त होना बहुत लंबी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो एक छोटा सा उदाहरण जिससे आप परिचित हैं, जरा दूसरे रूप से सुन लें उसे। महाभारत का अंत का सीन है ये। पांडवों के बारे में आपने सुना, वो गल गए थे स्वर्ग में जाने के लिए, जब गए वहीं की कहानी है। उससे पहले युधिष्ठिर को ये आभास होने लगा कि मेरे पास धर्म की शक्ति नहीं रही, कुछ नहीं रहा मेरे पास। राजा था ना, वो सम्राट था, कुछ भी नहीं है, जैसे खाली। भीम को लगने लगा कि मेरे पास तो बल ही नहीं रहा। उधर अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। युधिष्ठिर ने संदेश वाहक को दौड़ाया, श्री कृष्ण को बुला कर लाओ, अब सगुन हो रहे हैं। दूत जल्दी ही लौट के आया और बताया श्री कृष्ण तो चले गए, माना मृत्यु हो गई। तब पांडवों को यह आभास हुआ कि तुम्हारे पास जो कुछ था वो ईश्वरीय शक्ति थी। यही बात हम सब की है। संगम युग पर ये सारा काम ऊपर से हो रहा है, रिमोट कंट्रोल उधर ही है। हम उछलते ही रहते हैं, मैंने किया, ये किया। अपना रिमोट कंट्रोल बाबा के हाथ में दे दो, है अब सच्चे मन से दे दो, ये है समर्पण भाव। तो उसकी संपूर्ण शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी। और आज जैसे था, कंबाइंड जो बाबा से रहेंगे उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार रहेगा। बहुत बड़ी चीज है ये। समर्पित कर दें बाबा के सामने स्वयं को, हम तुम्हारे, हमारी सारी चिंताएं, बोझ, समस्याएं सब तुम्हारी। लेकिन तुम्हारी करके फिर चिंता नहीं, अगर चिंता है तो तुम्हारी नहीं की, मेरी है, तभी तो चिंता है ना। इस पे आप बहुत सूक्ष्म रूप से अभ्यास करें समर्पण भाव, और इसकी गहराई को एक महावाक्य से समझ के लें, याद रखेंगे। बाबा ने कहा व्यक्त में, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो, लिख लो आप, कहीं अच्छी जगह लिख के रख देना, जब तुम संपूर्ण समर्पण हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। इतनी सूक्ष्मता है इसमें। तो हमें समर्पण होना है, घर में रह के ही समर्पण होना है आपको। समर्पणता का अर्थ ये नहीं कि कोई स्थूल में समर्पित करे, मन से सब कुछ तेरा। तो एक छोटा सा प्रयोग, छोटी सी प्रैक्टिस सब करेंगे। जो कुछ आप अपने घर में लाओ उसे बाबा के आगे रखो। पहले शुरू करो, सब्जी लाए ना बाजार से, बाबा के आगे थैली रख दो, तुमको अर्पित, अब तुम्हारी सब्जियां खाएंगे, ठीक है। कपड़े लाओ रख दो, अब तुम्हारा दिया हुआ पहनेंगे, तुमको अर्पित। पैसा पहले वहां रखो, तुमसे हमारी पालना होगी, ये तुमको अर्पित। छोटी सी विधि अपनाओ, छोटी चीजों में करो। घर में कुछ भी लाए है ना, उसको बाबा के आगे रखो तो आदत पड़ जाए सब कुछ तेरा करने की, और ये बात बहुत ही अच्छी होगी। कई सेंटरों में मैंने देखा ऐसी विधि बहनों ने अपनाई है कि किसी को कुछ भी देना है ना, वो बाबा के आगे रख के चले जाते हैं चुपचाप। सोने की अंगूठी वहीं रख जाते हैं, चांदी का गिलास भी वहीं। फिर आखिर बहनों को कहना पड़े, भाई कहना पड़ा, कीमती चीज वहां ना रखा करो, कोई उठा ले। रशिया में तो बहुत ज्यादा किया ये बहनों ने, वहां तो उन्होंने टेबल रख दिया, एक बाबा और टेबल, सब उसी पे छोड़ के जाते हैं जिसको जो कुछ करना है। आप सब अपने गृहस्थ में रहते हुए ऐसा करो, पसंद है ये। शुरुआत है समर्पणता की, बाकी तो सूक्ष्मता है। मैंपन भी न रहे, इस पर बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। आप सब आए यहां पर, और ऐसी पुरुषार्थ की छोटी सी प्लानिंग बना लेना जो सिंपल हो, रोज की जा सके। कभी कभी उमंग में हम बहुत बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं जो 3 दिन ही चलती है बस, ऐसी प्लानिंग नहीं, सिंपल एंड प्रैक्टिकल जो सदा चले। और 3-3 मास का प्लानिंग करना तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। मैंने कल एक बात कही थी, रिपीट कर देता हूं, मेरा संगम कैसा बीता, और आने वाले संगम को हम ऐसे बिताएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा है ना यहाँ आना, भट्टी करना, कभी मिलता ही नहीं था मौका मधुबन में रहने का। शुरू से मिलते तो मेरी क्लास लास्ट में ही रखते हैं लोग, ठीक है, शुरू में मिल जाएंगे। अभी ज्ञान सरोवर में भट्टियों का प्रोग्राम बन गया, मैं आज ही सुना, लिस्ट आ गई है लंबी, क्योंकि इस बार बाबा के 2 टर्न में काफी बीच में छुट्टी है ना, 15-20 दिन मिल जाएंगे, तो वहां भी अच्छे प्रोग्राम ऐसे मेरा एक बहुत संकल्प था। हम लोगों ने सब बैठ के किया था ये काम। मुझे अहमदवन वालों से 3-4 बार क्लास करने का मौका मिला। मैंने कहा तुम्हें अच्छा लगता है क्या यहाँ कोई प्रोग्राम न चले? कहा ये एकोमोडेशन वाले कहते हैं एकोमोडेशन नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? दीदियां जानती हैं जब कुछ नहीं था 1000 लोग यही नहीं रहते थे। अब शांति भवन बना यही नहीं था, 2500 लोग भी यहाँ रहे। मैंने कहा 250 को कैसे नहीं रख सकते? तो मैंने कहा जरा लिस्ट तैयार करो किस बिल्डिंग में कितनी जगह है। बनाई लोगों ने। फिर मैंने कहा जाओ तुम नीचे जाओ, दादी रतन मोहिनी को भी कहो, मुन्नी बहन मोहिनी को भी कहो। तो बन गया फट से, रौनक रहती है ना, आने वाले भी खुश और मधुबन वाले भी खुश। मधुबन वालों को बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा लगता है जब अपने भाई बहने परिवार यहाँ आते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता था। थोड़ी सी सेवाएं रह गई थी तो मजा नहीं आता ना ऐसे में। तो सबको भी सुख मिलता है और आने वालों को भी। आते रहिए, साल में एक बार तो बनाएंगे ना, हैं दीदी? ठीक है, बहुत अच्छा। ओम शांति। अब सब समर्पित कर देना बाबा को।